अध्याय संख्या 20, मूल्यों का मापन, मीजरमेंट ऑफ वैल्यूज। मानव तरह तरह के अनुभव प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर जीवन के कुछ सामान्य सिद्धांत विकसित करता है। व्यक्ति के उन सिद्धांतों को मूल्यों के नाम से पुकारा जाता है। मूल्य मानव व्यक्तित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के मूल्यों को जानकर उसको समझना सरल हो जाता है। प्रस्तुत अध्याय में मूल्यों का मापन करने वाली विधियों की चर्चा की गई है। मूल्यों का अर्थ, मीनिंग ऑफ वैल्यूज। साधारणतः मूल्य शब्द का प्रयोग व्यक्ति की पसंद, नापसंद अथवा प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए किया जाता है। व्यक्ति के मूल्य बताते हैं कि वह व्यक्ति क्या करना चाहता है अथवा वह विभिन्न बातों को क्या प्राथमिकताएं प्रदान करता है। किसी व्यक्ति में जो मूल्य प्रमुख होते हैं वह उन्हीं के अनुरूप कार्य करना चाहता है तथा ऐसे कार्यों को संपादित करके उसे संतुष्टि या आनंद की प्राप्ति होती है। ननली NUNNALY के अनुसार मूल्य जीवन के लक्ष्यों तथा जीवन शैली से संबंधित होते हैं। ब्राइटमैन के विचार में मूल्यों से तात्पर्य किसी पसंद से होता है। आलपोर्ट के अनुसार मूल्य वे विश्वास हैं जिन पर व्यक्ति प्राथमिकता से कार्य करता है। पीपर ने मूल्यों को रुचियों, आनंदों, पसंदों, प्राथमिकताओं, कर्तव्यों, नैतिक दायित्वों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, मांगों, आकर्षणों तथा चयनित अभिमुखता की अनेक प्रकार के रूप में परिभाषित किया है। फिलंक FLINK ने मूल्यों की अनेक परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद कहा कि मूल्य वे मानक हैं जिनसे कार्य करने के विभिन्न विकल्पों में व्यक्ति का चयन प्रभावित होता है। स्पष्ट है कि मूल्य व्यक्ति के वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जो उसके जीवन चक्र को निर्देशित करते हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य व्यक्ति के वे निर्देशक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो उसके संपूर्ण जीवन दर्शन व शैली को निर्धारित करते हैं। सन 1928 में स्प्रेंजर SPRANGER ने मूल्यों को 6 वर्गों में विभक्त किया। ये हैं सैद्धांतिक मूल्य थियोरेटिकल वैल्यूज, आर्थिक मूल्य इकोनॉमिक वैल्यूज, सौंदर्यात्मक मूल्य एस्थेटिक वैल्यूज, सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्य पॉलिटिकल वैल्यूज तथा धार्मिक मूल्य रिलीजियस वैल्यूज। आलपोर्ट, वर्नन तथा लिंडजे के द्वारा मूल्यों के मापन के लिए बनाया गया प्रथम मूल्य परीक्षण स्प्रेंजर के द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित था। यद्यपि बाद में कुछ अन्य मूल्यों को भी पहचाना गया तथा भिन्न भिन्न मूल्य परीक्षणों में भिन्न भिन्न मूल्यों को सम्मिलित किया गया, फिर भी अधिकांश मूल्य परीक्षण मूलतः स्प्रेंजर के वर्गीकरण पर ही आधारित हैं। मूल्यों का मापन, मीजरमेंट ऑफ वैल्यूज। व्यवहारिक विज्ञानों में मापन एक जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब और भी जटिल हो जाती है जब भावात्मक क्षेत्र के चरों का मापन करना होता है। मूल्यों का मापन तो भावात्मक क्षेत्र के चरों में सर्वाधिक कठिन माना जाता है। यद्यपि मूल्यों के मापन के लिए किसी पूर्णतया विश्वसनीय व वैध उपकरण को तैयार करना एक असंभव कार्य है, फिर भी मनोमितिकों ने मूल्यों के मापन के लिए कुछ उपकरण व तकनीकों का विकास कर लिया है तथा इन उपकरणों की सहायता से मूल्यों का मापन संभव हो सकता है। मूल्य मापन के कार्य में प्रयुक्त किए जा सकने वाले प्रमुख उपकरण निम्नवत हैं। प्रथम, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। द्वितीय, साक्षात्कार इंटरव्यू। तृतीय, प्रश्नावली क्वेश्चनेयर। चतुर्थ, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। 5, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन। इसके अतिरिक्त शाब्दिक विभेदन मापनी, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, समाजमिति सोशियोमेट्री, संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स आदि का प्रयोग करके भी मूल्यों का मापन किया जा सकता है, परंतु मूल्यों के मापन में ये विधियां अपेक्षाकृत नवीन होने के कारण बहुत कम प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी होगी कि उपरोक्त सभी उपकरण मूल्यों के संबंध में जो भी सूचना प्रदान करते हैं उसकी वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता तथा यथार्थता प्रायः संदिग्ध होती है। अतः मूल्यों के मापन के लिए किसी उपकरण का चयन करते समय तथा उपकरण से मूल्यों के संबंध में प्राप्त सूचना की व्याख्या करते समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न उपकरण भिन्न भिन्न परिस्थितियों या उद्देश्यों की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो सकते हैं। यद्यपि उपरोक्त सभी उपकरणों की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र की जा चुकी है, फिर भी मूल्य मापन के लिए बहुतायत से प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरणों की चर्चा मूल्यों के मापन के विशेष संदर्भ में पुनः की जा रही है। अध्यापक मूल्य अवलोकन अनुसूची, टीचर वैल्यूज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, निर्देश नीचे द्विध्रुवीय बाइपोलर मूल्य गुणों की सूची दी गई है। मूल्य गुण के दोनों ध्रुवों के बीच 1, 2, 3, 4 व 5 के अंक लिखे हुए हैं। 1 का अंक एक ध्रुव को, 3 का अंक मध्य स्थिति को तथा 5 का अंक दूसरे ध्रुव को इंगित करता है। आप अपने कक्षा अध्यापक के बारे में सोचिए तथा निर्णय करें कि विभिन्न मूल्य गुणों के लिए आपके विचार में अध्यापक की स्थिति 1, 2, 3, 4 व 5 में से किस अंक के द्वारा सर्वोत्तम व्यक्त होगी। जिस अंक को आप चुनें उसके चारों ओर घेरा बना दें। कृपया निष्पक्ष ढंग से निर्णय करें। आपकी प्रतिक्रियाएं पूर्णतः गोपनीय रहेंगी। आपका नाम, कक्षा, अध्यापक का नाम, जिनके व्यवहार को अवलोकित किया है। मूल्य गुण, ऋणात्मक ध्रुव, निष्ठुर, निर्दयी, लापरवाह, अशिष्ट, नीरस, अन्यायी, कायर, अनुशासित, बेईमान, असहयोगी, स्वार्थी, मिथ्याभाषी, आलसी। प्रतिक्रिया 1, 2, 3, 4, 5 सभी में इसी प्रकार। धनात्मक ध्रुव, संवेदनशील, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, शिष्ट, हंसमुख, न्यायप्रिय, साहसी, अनुशासित, ईमानदार, सहयोगी, परमार्थी, सत्यभाषी, परिश्रमी। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन व्यक्ति के व्यवहार के मापन की संभवतः सर्वाधिक प्राचीन विधि है। प्राचीन काल से ही व्यक्ति अपने साथियों के व्यवहार का अवलोकन करके उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करता रहा है। मापन के एक उपकरण के रूप में अवलोकन से अभिप्राय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के शाब्दिक व अशाब्दिक बाह्य आकार, वर्बल एंड नॉन वर्बल ओवर्ट बिहेवियर को देखकर उसका वर्णन करने से है। मूल्यों के मापन के लिए अवलोकन को सरल, सर्वसुलभ व उपयोगी उपकरण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अवलोकन के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा किए गए वास्तविक व्यवहारों व आचरण को देखकर उनके अभिव्यक्त मूल्यों को ज्ञात करना संभव है। प्रायः कथनी तथा करनी में अंतर होता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामाजिक दबावों के कारण अनेक बातों, विचारों, दृष्टिकोणों आदि को लिखित या मौखिक रूप में स्वीकार करने में हिचकता है। वह सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों, विचारों, दृष्टिकोणों आदि को ही खुले रूप से स्वीकार करता है, परंतु अपने वास्तविक आचरण में व्यक्ति निहित स्वार्थों के अनुकूल व्यवहार करता है। स्व उल्लिखित सेल्फ रिपोर्टेड व्यवहार तथा वास्तविक व्यवहार के अंतर के कारण मूल्यों का मापन स्व उल्लेखित उपकरणों के द्वारा कभी कभी उचित प्रतीत होता है, विशेषकर उन मूल्यों के संबंध में जिन पर व्यक्तियों के विचार समाज द्वारा स्वीकृत मापदंडों से भिन्न होने की संभावना हो। यदि अवलोकन को प्रयोज्यों के व्यवहार को सरलता व सुगमता से अवलोकित कर सकता है तो अवलोकन के द्वारा मूल्यों का मापन करना संभव होता है। अवलोकन तभी यथार्थ, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय व वैध ढंग से मूल्यों का प्रभावशाली मापन कर सकता है जब इसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। अवलोकित बातों को तत्काल लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। अवलोकन को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध करने के लिए अवलोकन अनुसूची ऑब्जर्वेशन शेड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। अवलोकन अनुसूची का एक उदाहरण पृष्ठ 346 पर प्रस्तुत किया गया है। छात्रों की सहायता से उनके अध्यापकों के मूल्यांकन को जानने के लिए इस प्रकार की अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापकों की सहायता से छात्रों के मूल्यों को जानने के लिए भी अवलोकन अनुसूची बनाई जा सकती है। अवलोकन के द्वारा मूल्यमापन करते समय परिणामों की सार्थकता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। यदि अवलोकनकर्ता अपने कार्य को सुचारू ढंग से व निष्पक्षता के साथ ठीक ठीक करने में समर्थ होता है तो परिणामों के विश्वसनीय व वैध होने की संभावना बढ़ जाती है। साक्षात्कार इंटरव्यू। मूल्यमापन के लिए साक्षात्कार विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संकलित करने तथा अन्य विधियों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करने की एक सरल व प्रचलित विधि व्यक्तियों से प्रश्न पूछना है। साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इंटरव्यूअर और इंटरव्यू बोर्ड प्रयोजक को अपने सामने बैठाकर उससे प्रश्न पूछता है तथा उसके द्वारा दिए उत्तरों का विश्लेषण करके प्रयोजक के मूल्यों का अनुमान लगाता है। साक्षात्कार दो प्रकार का हो सकता है, संरचित साक्षात्कार स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तथा असंरचित साक्षात्कार अनकंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू। संरचित साक्षात्कार को मानकीकृत साक्षात्कार स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी भाषा तथा उनका क्रम पहले से निश्चित हो रहते हैं। साक्षात्कारकर्ता अपनी इच्छा से अथवा परिस्थिति जन्य आवश्यकता पर भी अपनी मर्जी से प्रश्न नहीं पूछ सकता है। उसका कार्य तो पूर्व निर्धारित प्रश्नों को उनके पूर्व निश्चित क्रम में एक एक करके पूछना तथा उत्तर प्राप्त करना मात्र है। इसके विपरीत असंरचित साक्षात्कार, जिसे अमानकीकृत साक्षात्कार के नाम से भी पुकारा जाता है, में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित कोई बात निर्धारित नहीं रहती है। साक्षात्कारकर्ता को केवल साक्षात्कार का उद्देश्य बताया जाता है तथा उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह स्वेच्छा से तत्काल प्रश्नों की संरचना करता है तथा पूछता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के साक्षात्कार में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार का साक्षात्कार अधिक लोचनीय, फ्लेक्सिबल तथा मुक्त ओपन होता है। कभी कभी संरचित व असंरचित साक्षात्कारों के मिश्रित स्वरूप को अपनाया जाता है, जिसे मिश्रित प्रकार का साक्षात्कार मिक्स्ड फॉर्म इंटरव्यू अथवा अर्ध मानकीकृत सेमी स्टैंडर्डाइज्ड अथवा अर्ध संरचित सेमी स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार के नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में मुख्य प्रश्न तो पहले से निर्धारित होते हैं, जबकि पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को साक्षात्कारकर्ता तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करता है। साक्षात्कार का मिश्रित ढंग मूल्यों के मापन में काफ़ी उपयोगी होता है। प्रश्नावली क्वेश्चनियर QUESTIONNAIRE क्वेश्चनियर। प्रश्नावली वास्तव में मानकीकृत या संरचित साक्षात्कार का लिखित रूप है। साक्षात्कारकर्ता एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकता है, जबकि प्रश्नावली के माध्यम से एक समय में अनेकों व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि प्रश्नावली के द्वारा लिखित रूप में प्रश्नों को देने तथा लिखित ही उत्तर प्राप्त करने के कारण प्रयोज्यों के द्वारा प्रश्नोत्तर देने का ढंग, सोचने का ढंग, मनोभावों आदि का ज्ञान होना संभव नहीं होता है। जबकि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता अपने सम्मुख बैठे प्रयोज्य के उत्तर की ढंग, सोचने के ढंग व मनोभावों का अवलोकन कर सकता है, फिर भी एक साथ अनेकों व्यक्तियों पर प्रशासित होने के कारण प्रश्नावली का विशेष महत्व है। विशेषकर जब अनेक व्यक्तियों के मूल्यों का मापन करना होता है, तब कम समय, श्रम व धन की सहायता से मापन कार्य संभव होता है तथा व्यर्थ के अपव्यय की बचत होती है। प्रश्नावली वास्तव में प्रश्नों का एक संकलन है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख लिखित या मुद्रित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता को अपना उत्तर भी लिखित रूप में देना होता है। कभी कभी प्रश्नों के साथ ही उत्तर देना होता है तथा कभी कभी उत्तर पत्रक अलग से होता है। प्रश्नावली भी दो प्रकार की हो सकती है, प्रतिबंधित प्रश्नावली क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनियर तथा मुक्त उत्तर प्रश्नावली ओपन एंडेड। प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ उत्तर दिए होते हैं तथा उत्तरदाता को इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना होता है, इसलिए प्रतिबंधित प्रश्नावली को बाध्य उत्तर प्रश्नावली भी कहते हैं। इसके विपरीत मुक्त उत्तर प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने शब्दों में मनचाहे उत्तर को देने के लिए स्वतंत्र रहता है। मूल्यों के मापन के लिए दोनों ही प्रकार के प्रश्नावलियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रतिबंधित या बाध्य चयन प्रश्नावली के प्रश्नों का एक उदाहरण पिछले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है। मूल्य प्रश्नावली सारणी। मूल्य प्रश्नावली वैल्यूज क्वेश्चनियर। आपका नाम, व्यवसाय, निर्देश। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के दो संभावित उत्तर भी दिए गए हैं। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा दिए गए उत्तरों में से किसी एक का चयन करें। कृपया आप जिस उत्तर को अधिक पसंद या महत्व देते हैं उनके आगे बने कोष्टक में सही का निशान बना दें। याद रखें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। आप अपने निष्पक्ष उत्तर दें। आपके उत्तर पूर्णतया गोपनीय रहेंगे। प्रश्न। पहला प्रश्न, अपने संबंधी की लड़की की शादी में आप किस बात को अधिक महत्व देना पसंद करेंगे? वर के स्वास्थ्य को, वर की आय को? आपके उत्तर। द्वितीय, आप निम्न में से किस परिस्थिति में आसानी से झूठ बोल सकते हैं? प्रथम, धन कमाने के लिए। द्वितीय, मित्र को दंड से बचाने के लिए। तृतीय क्वेश्चन, आपके विचार में निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? पहला, ईश्वर में विश्वास करना। दूसरा, शिक्षा के प्रति लगाव रखना। चौथा प्रश्न, अवकाश का दिन आप किस प्रकार से व्यतीत करना अधिक पसंद करते हैं? प्रथम, घरेलू कार्यों को करके। द्वितीय, मित्रों के साथ गप बैठक करके। पांचवा, आपके विचार में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? पहला, छात्रों को धनोपार्जन के लिए तैयार करना। दूसरा, छात्रों में अच्छे संस्कार विकसित करना। छठा क्वेश्चन, आप किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं? प्रथम, जो पौष्टिक हो। दूसरा, जो अल्प मूल्य का हो। सातवां क्वेश्चन, प्रजातंत्र में सरकार का कर्तव्य है? विकल्प एक, नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करना। द्वितीय, सभी को अधिक समृद्ध बनाना। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी की सहायता से किसी व्यक्ति की पसंद तथा नापसंद की सीमा तथा गहनता को जानकर उसके मूल्यों का मापन करने का प्रयास किया जाता है। निर्धारण मापनी में कुछ कथन या शब्द होते दिए होते हैं तथा प्रयोज्य को उन कथनों या शब्दों के प्रति अपनी पसंद, सहमति या महत्ता की सीमा व गहनता को इंगित करना होता है। प्रयोज्य की पसंद या सहमति को जानने के लिए कुछ शाब्दिक या आंकिक संकेतों को एक सात्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उत्तरदाता को इन दिए गए संकेतों में से किसी एक का चयन करके अपनी पसंद की सीमा को बताना होता है। निर्धारण मापनी की सहायता से मूल्यों का मापन सरलता से किया जा सकता है। प्रश्नावली की तरह से निर्धारण मापनी भी एक साथ अनेक व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। निर्धारण मापनी का एक उदाहरण अगले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन। मूल्यों के मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रक्षेपण से तात्पर्य व्यक्ति के मूल्यों, दृष्टिकोणों, पसंदों आदि को परोक्ष रूप से जानना है। प्रक्षेपण में व्यक्ति के सम्मुख कोई असंरचित उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। इन प्रतिक्रियाओं में व्यक्ति अपने मूल्यों को भी आरोपित कर देता है। व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से उसके मूल्यों को ज्ञात किया जाता है। वाक्य पूर्ति, कहानी बनाना, चित्र व्याख्या, निबंध लेखन आदि की सहायता से व्यक्ति के मनोभावों को प्रक्षेपित कराया जा सकता है। प्रक्षेपण विधि की विस्तृत चर्चा अध्याय 16 में की जा चुकी है। निर्धारण मापनी की सारणी, छात्र मूल्य निर्धारण मापनी, स्टूडेंट वैल्यूज रेटिंग स्केल, छात्र का नाम, कक्षा, विद्यालय, दिनांक, निर्देश। आगे दी गई तालिका में कुछ कार्य दिए जा रहे हैं। आप सोचें कि ये कार्य आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई कार्य आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो तो उस कार्य के आगे अत्यधिक महत्वपूर्ण वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा दें। इसी प्रकार के कार्यों के अधिक महत्वपूर्ण, कुछ कुछ महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण व महत्वहीन होने की स्थिति में उन कार्यों के आगे संबंधित कॉमों में सही का निशान बना दें। कृपया अपने विचार सही सही व्यक्त करें। क्रम एक, कार्य दयालुता, अत्यधिक महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, महत्वहीन। द्वितीय, सत्यनिष्ठा। तृतीय, समानता। चतुर्थ, सहयोग। पंचम, स्वच्छता। षष्ठ, श्रम के प्रति निष्ठता। सप्तम, विनम्रता। अष्टम, कर्तव्य निष्ठा। नवम, सौंदर्य प्रियता। दसम, साहस। सारांश, मूल्यों का मापन करना एक कठिन कार्य है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, प्रक्षेपण आदि विधियों की सहायता से मूल्यों का मापन किया जा सकता है। व्यक्ति की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति उसके वास्तविक आचरण से भिन्न हो सकती है, इसीलिए स्व उल्लिखित विधियों से मूल्यों का मापन करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।